अगला शीर्षक है केशव के काव्य में युगीन चित्रण, और इसे लिखा है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में कविवर केशव दास का स्थान जितना विवादास्पद है उतना शायद किसी अन्य कवि का नहीं। केशव दास का रचना काल भक्ति युग है। अनेकानेक किंवदंतियों से प्रसिद्ध है कि केशव गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, किंतु प्रसिद्ध इतिहास लेखकों ने केशव को भक्त कवि नहीं माना और उन्हें साहित्य के इतिहास में सूर, तुलसी, मीरा आदि की परंपरा से पृथक रखकर श्रृंगारी कवि ठहराया है। श्रृंगार की जो समृद्ध काव्य परंपरा रीतिकाल में प्रवाहित हुई, केशव दास का स्थान उसमें भी नहीं है। यह निर्विवाद होते हुए भी रीतिकाव्य की शास्त्रीय परंपरा में गुण और परिमाण की दृष्टि से केशव का काव्य अप्रतिम है। केशव रीतिकाव्य के प्रवर्तक नहीं माने गए। राम काव्य परंपरा को इतिहास लेखकों ने एक काव्य धारा के रूप में स्वीकार किया है। प्राणचंद चौहान और हृदय राम जैसे साधारण कवियों को तो राम काव्य धारा में स्थान प्राप्त है, किंतु रामचंद्रिका जैसा महाकाव्य लिखने वाले केशव दास को उस परंपरा से भी अस्वीकृत किया गया है। भाग्य की यह विचित्र विडंबना केशव के संदर्भ में जितनी सटीक उतरती है अन्यत्र शायद ही कहीं देखने को मिले। केशव दरबारी कवि थे। ओरछा राज्य के दरबार में उनका सम्मान था। उनकी सहज प्रवृत्ति श्रृंगार काव्य प्रणयन की थी, किंतु काव्य प्रतिभा का उन्हें भरपूर वरदान प्राप्त था। इसे सहज में ही हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने क्यों कर भुला दिया। शास्त्र का जैसा पुष्ट और परिपूर्ण ज्ञान केशव को था, वैसा उनके समसामयिक कवियों को नहीं था। यह तथ्य भी अनायास विस्मृत हो गया। केशव का काव्य युगीन परिस्थितियों तथा राजदरबारों का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है, किंतु उसका इन गुणों के कारण भी इतिहास ग्रंथों में उल्लेख नहीं हुआ। इन समस्त उपेक्षाओं के बावजूद केशव का स्थान हिंदी साहित्य में अप्रतिम बना हुआ है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। वस्तुतः युग और युगीन परिस्थितियों के संघर्षों के बीच केशव ने जो काव्य सृजन किया वह संत, भक्त, श्रृंगारी, वीर आदि किसी एक कोटि का नहीं है। केशव दास का व्यक्तित्व वैविध्यपूर्ण है। राम के प्रति असीम श्रद्धा और राजा के प्रति संपूर्ण समर्पण, दरबारी वातावरण में लोक व्यवहार का ज्ञानार्जन और पाखंडी दंभी व्यक्तियों के प्रति गहरी अरुचि, शास्त्र परंपरा में काव्य सृजन और वैराग्य विवेक के वर्णन में स्वतंत्र चिंतन पद्धति का अनुसरण, ये सभी विलक्षण रुचियां केशव के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इस रुचि वैविध्य का वरदान केशव के व्यक्तित्व को अपने समसामयिक कवियों से पृथक करने के साथ अद्वितीय भी बना देता है। कवि और आचार्य का मिश्रण तो रीतिकालीन अनेक कवियों में लक्षित किया जा सकता है, किंतु लोक और परलोक को व्यवहार समन्वित आदर्श परंपरा अन्यत्र दुर्लभ है। केशव ने अपने समकालीन समाज को जिस अंतरंग दृष्टि से देखा है वैसी सूक्ष्मेक्षिका अन्य कवियों के पास नहीं थी। संत, भक्त कवि या आचार्य के एकांगी व्यक्तित्व से ऊपर उठकर या इन चारों में समान भाव से अनुस्थित रहकर पनपने वाला व्यक्तित्व हिंदी में यदि किसी कवि का है तो वह कविवर केशव दास का ही है। इस चतुर्विध प्रभाव से निर्मित व्यक्तित्व का एक उपेक्षित पक्ष है व्यापक युगीन चित्रण। केशव के इसी उपेक्षित पहलू का उद्घाटन करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां यहाँ लिख रहा हूँ। केशव दास के सुप्रसिद्ध ग्रंथों में कवि प्रिया और रसिक प्रिया यद्यपि काव्य शास्त्रीय परंपरा के रीति ग्रंथ हैं, किंतु उनके उदाहरणों में केशव ने लोक रीति व्यवहार का अनेक स्थानों पर संकेत दिया है। उन संकेतों को शायद पाठक दूढ़ारूढ़ कल्पना कहकर अमान्य ठहरा दें, अतः मैं केशव के अन्य ग्रंथों को इस संदर्भ में उदाहरित करना उचित समझता हूँ। केशव रचित महाकाव्य रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और वीर सिंह देवचरित के आधार पर ही मैं केशव के लोक व्यवहार ज्ञान का तथा युगीन चित्रण का परिचय प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। राजधर्म और युग धर्म। केशव साहित्य पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों का प्रयत्न यह रहा है कि केशव की दार्शनिक मान्यताओं के सदृश से लौकिक या राजनीतिक मान्यताओं का मूल उत्स प्राचीन नीति ग्रंथों में ढूंढकर सिद्ध करें कि केशव राजनीति के संबंध में शुक्राचार्य के अनुयायी थे, धर्म नीति के संबंध में मनु को प्रमाण मानते थे और युद्ध नीति के लिए उनका ध्यान चाणक्य की ओर जाता था। यह ठीक है कि दो तीन स्थलों पर केशव ने शुक्राचार्य और मनु का स्मरण किया है, किंतु उनका मौलिक चिंतन सर्वतोभावेन इन आचार्यों के कठोर शास्त्र मर्यादा का अनुकर्ता नहीं था। केशव ने राजनीति का वर्णन रामचंद्रिका तथा वीर सिंह देवचरित में अनेक स्थलों पर किया है। राजा का वर्णन करते हुए केशव ने उनकी कोटियां या वर्ग बनाए हैं, उनका आधार शुक्राचार्य का ही है। रावण ने महोदर से मंत्र राजनीति की जिज्ञासा की थी। महोदर ने पहले तो रावण से कहा कि आप हित की बात को भी उल्टी समझते हैं, समय असमय का विचार आपको नहीं रह गया है, किंतु आपका आग्रह है कि मैं संक्षेप में राजनीति का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी पर राजा चार प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के राजा इसी लोक की साधना करना जानते हैं, जैसे बलि वेणु को जो अपने को ईश्वर मानता था। दूसरे प्रकार के राजा परलोक की साधना करते हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य पारायण कहकर समस्त राज्य ऐश्वर्य दान कर लिया था। तीसरे प्रकार के राजा लोक परलोक दोनों का साधन करते हैं, जैसे मिथिला के राजा विदेह जनक। चौथे प्रकार के राजा ऐसे दुराग्रही होते हैं कि अपना लोक परलोक दोनों स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर लेते हैं, जैसे राजा त्रिशंकु जो सबके उपहास के पात्र हैं। इसी प्रकार मंत्रियों के शील स्वभाव कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए केशव ने चार प्रकार के मंत्री स्वीकार किए। मंत्रियों के वर्णन में भी केशव का उपजीव शुक्र नीति का है। केशव कहते हैं कि मोहि सुनायो शुक्र जु सोधी सोधी सप्तंत्र। इसी प्रकार मंत्रियों के मंत्र भी चार प्रकार के लिखे हैं। इन मंत्रों का स्वरूप विष समान अनार समान एक गुड़ जैसा और एक नीम जैसा। इस राजनीति वर्णन में केशव पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव कितनी मात्रा में पड़ा था यह विचारणीय है। वस्तुतः केशव ने अपने समय के राजा और मंत्रियों को लोक व्यवहार करते देखा था। उस समय के हिंदू नरेश सम्राट अकबर या उसके बाद जहांगीर के अधीन थे। उनकी स्वतंत्र सत्ता प्रायः लुप्त हो गई थी, अतः राजनीति के सिद्धांतों के प्रतिपादन में परंपरा से हटकर हम कोई नवीन तथ्य केशव के वर्णनों में नहीं पाते। केशव सामंती युग के कवि थे। जिन राज दरबारों में रहते थे उनका प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक था। असाधु राजा को साधु मानने की बात केवल सामंती प्रभाव में कही या मानी जा सकती है। जो असाधु या दुष्ट हो उसे साधु मानना ना तो सत्य है और ना न्याय संगत ही। लेकिन केशव अपने युग के प्रभाव में कहते हैं, इनको विलगु न मानिए के ही केशव पल आधु पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। नारी धर्म वर्णन। नारी धर्म वर्णन प्रसंग में भी केशव के सीमित और युगीन प्रभाव से आविष्टित है। परंपरा से नारी को परतंत्र रहने तथा पति के निधन पर सती होने का उपदेश धर्मोपदेष्टा करते आ रहे हैं। मनु ने भी नास्त्री स्वातंत्र महर्ति कहकर इसी संकीर्ण विचार का समर्थन किया था। केशव ने इसी दृष्टि के आलोक में नारी धर्म का वर्णन लिखा है। नारी तजे न आपनो सपने हु भरतार पंगु गुंग बौरा वधिर अंध अनाथ अपार। अंध अनाथ अपार वृद्ध बावन अतिरोगी बालक पंड कुरूप सदा कुवचन जड़ भोगी कलही कोढ़ी भीरु चोर ज्वारी व्यभिचारी अधम अभागी कुचल कुमति पति तजैन नारी। इस नारी धर्म वर्णन को पढ़कर जिस गहरे अंधविश्वास की जड़ता लक्षित होती है वह उस युग की परंपरा का प्रतिफलन मात्र है। रामचरितमानस में ठीक इसी प्रकार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया। विचार और विवेक विहीन इस पाखंड ने नारी को चेतन शक्ति संपन्न सत्ता विहीन ही ठहरा दिया था। इतना ही नहीं, केशव ने तो विधवा धर्म वर्णन करते हुए जिन कठोर वर्जनाओं का विधान किया है उन्होंने जीवित नारी को मृतवत बना दिया है। विधवा के लिए निषेधों की लंबी तालिका प्रस्तुत करते हुए केशव दास कहते हैं, गान बिन मान बिन हास बिन जीवही तप्त नहीं खाए जल शीत नहीं पी वही तेल तजी खेल तजी खाट तजी सो वही शीत जलन हाय नहीं उष्ण जल जीवही खाए मधुरान नहीं न पाए पनही धरे काय मन वाच सब धर्म करिवो करे कृच्य उपवास सब इंद्रिय न जीतही पुत्र सिखलीन तन ज्यों लगी अतीतही। इसी संदर्भ में यह जान लेना चाहिए कि जितनी कठोर कृत साधन स्त्री के लिए केशवदास ने लिखी है, अपने युग के प्रभाव में पुरुष को उतनी ही स्वतंत्रता भी दी है। पति के मरने पर पत्नी का हंसना, खेलना, स्नान करना, खाना सब निषिद्ध है। विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन पति महाशय पुरुष होने के नाते सर्वतंत्र स्वतंत्र रहकर पत्नी के मरने पर दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह भी कर सकते हैं और भोग विलास के समस्त साधनों में लीन रह सकते हैं। पति पत्नी बहु करे पति न पतिनी बहु करही, पति हित पत्नी जरही, पति न पत्नी हित मरही। धन महिमा। सामंती युग में धन संपत्ति के विषय में वही धारणा थी जो हम आज के युग में देख रहे हैं। वैराग्य और अपरिग्रह का उपदेश धर्म ग्रंथों में लिखा अवश्य मिलता है, किंतु जीवन में उसे चरितार्थ कर पाना असंभव नहीं तो दुसाध्य अवश्य है। संस्कृत की सर्वे गुणा कांचि मांस्रयते वाली सूक्ति अपने व्यवहारिकता में जितनी सत्य है, इस उपनिषद की माग्रिधा कस्विधनम उतनी ही आदर्शमयी है। केशव के समक्ष ये दोनों विचारधाराएं विद्यमान थी। केशव दरबारों के ठाठबात और ऐश्वर्य से पूर्णतया परिचित थे। उन्होंने अपने युग को देखकर नहीं स्वयं भोग कर रहा था। काहू को नहीं कोऊ मित, मित अकेलाई जाग चित्त, सोई पंडित सोई साधु, जाके घर में वित्त अगाधु, ऊंच नीच सब जाते होई, उचही नीच बखानन लोई, ना वित्तही तु त्रिन कर गने, बहुत विबूचे तो सह धने। धन की अमित महिमा का गान केशव की यथार्थवादी दृष्टि का परिणाम है। दान भी वही दे सकता है जो धनवान है, सम्मान भी वही प्राप्त कर सकता है जिसके पास धन है। धनी वही है जो धन वाला है। इस संसार में धन से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। धन की इस महिमा को पढ़कर लगता है त्याग, वैराग्य और अपरिग्रह केवल धर्म ग्रंथों में ही रहते हैं। व्यवहार में उन्हें न तो कोई प्राप्त करना चाहता है और न उन्हें पाकर कोई धन्य ही होता है। जो धन होए तो दीजे तू दान, धन ही ता है सब सम्मान, जाही के धन सो ही धन्य, ताते मलिन धरती अन्य। कली वर्णन और युगीन चित्रण। केशवदास ने अपने युग का वर्णन स्थान स्थान पर प्रसंग आने पर तो किया है, किंतु विज्ञान गीता में कलयुग का विस्तृत वर्णन भी प्रकारांतर से अपने युग का ही चित्रण है। विज्ञान गीता का सप्तम प्रभाव इसी कलयुग वर्णन के लिए लिखा गया है। यदि हम वर्णन के तथ्यों का विश्लेषण करें तो विदित होगा कि मध्य युग की स्थिति को ही केशव ने शब्दों में अंकित किया है। चावार्क की विचारधारा उस युग में बड़ी तीव्रता से फैल रही थी और स्थान स्थान पर उनके गुप्त केंद्र बनाए थे। वेद और शास्त्र के प्रति चावार्क मतावलंबियों की उपेक्षा बुद्धि थी। वेद के निर्माता वे लोग भांड, धूर्त और निशाचर को मानते थे। ऋण करके घी पीने में उनका विश्वास था। भस्मीभूत देह का पुनरागमन उनके मत में कदापि संभव न था। चावार्क संप्रदाय का यह प्रभाव केशव ने कल्पना के आधार पर नहीं लिखा है, वस्तुतः उस काल में यह सब घटित हो रहा था। केशव ने उसे कलिकाल कहकर चित्रित भर कर दिया है। हास विलास विलासिंस हो, मिली लोचन लोल विलोकन रूरे, भातिन भाति के परिरंभन निर्भय, राग विरागिन पूरे। नागलता दल रंग रंग, अधरामृत पान कहा सुख सूरे, केशव दास कहा व्रत, संयम संपत्ति मांझ विपत्ति न कूरे। हास विलास के मध्य लोल लोचनों का सौंदर्य, अलिंगन परिरंभन का आनंद और अधरामृत पान के साथ इस संसार में व्रत और संयम के लिए स्थान ही कहाँ है। यह वस्तुतः सामंती युग का पूरा सजीव प्रभाव है। कलियुग के प्रभाव का वर्णन केशवदास ने प्रायः शैली में किया है जिस शैली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। ब्राह्मण जाति जिसका कर्म अध्ययन अध्यापन था, इस काल में पैसा लेकर वेदों के ज्ञान को बेच रही है। क्षत्रिय प्रजा पालन से विमुख होकर ब्राह्मणों की जीविका छीन रहे हैं। वैश्य वर्ग का व्यापार शिथिल हो गया है। शूद्र लोग मूर्ति पूजन में लीन हैं, तस्करी करते हैं और राजा से भयभीत ना होकर मनमाना आचरण करते हैं। यह विपर्यय देखकर लगता है कि यह युग मर्यादा विरोधी है। ब्राह्मण बेचत वेदनी को सुमलेक्ष महिप की सेव करै जू। अक्षीय छांडट है परजा अपराध बिना द्विजवृत्ति हरै जू। छाड़ दियो क्रय विक्रय वैश्यनी छत्रिन ज्यों हथियार धरै जू। पूजत शूद्र शिला धन चोरती चित्तमय राजनी को न डरै जू। भूलत है कुल धर्म सबै तबहीं जबहीं वह आनी ग्रसै जू। केशव वेद पुराणनी कौन सुनै समुझै न त्रसै न हसै जू। देव निते नर देवनी ते सुतिया वर बार न ज्यों विलसै जू। यंत्रन मंत्रन भूरी गनै जग यौवन काम पिसाच बसै जू। तीर्थ महंत और मठाधीश केशवदास यद्यपि परंपरावादी रूढ़ विश्वासों में स्वयं आस्था रखते थे, किंतु उन्हें इस बात का दुख था कि धर्म स्थान अथवा तीर्थ स्थान पाखंड से भरते जा रहे हैं। दंभ और पाखंड के आवरण में साधु का कपट वेश धारण करने वालों को केशव ने क्षमा नहीं किया। गंगा के किनारे धूमि रमाकर पूजन का ढोंग करने वाले कपटी साधुओं को तथा मठों मंदिरों में महंत या मठाधीश बनकर जनता को ठगने वाले कपटी धर्मात्माओं को केशव ने घृणा की दृष्टि से देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के नाम पर मठों मंदिरों में जो स्वेच्छाचार और सदाचार उस युग में फैल गया था उसे केशव ने भली भांति देखा था। उनकी दृष्टि उन स्थानों पर गई थी जहां धर्म के नाम पर भीषण अनाचार होता था। गंगा नदी के पावन तीर्थ पर ढोंग करने वाले साधुओं का केशव ने इस प्रकार वर्णन किया है। गंगा काछनी वरती हो पूजत साधु अपाट पाई कपिला गाये सी पटु पाखंड चपाट। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि केशव का युग धर्म और कर्मकांड की दृष्टि से पाखंड का युग था। महंत और मठाधीश ढोंग का स्वांग रच रहे थे। कन्नौज के किसी दुष्चरित मठधारी का वर्णन रामचंद्रिका के एक प्रसंग में केशव ने समाविष्ट कर दिया है। यह वर्णन वस्तुतः मठाधीशों की यथार्थ स्थिति का सटीक शैली में परिचय देने वाला है। एक कन्नौज हुतौ मठधारी देव चतुर्भुज कौ अधिकारी मंदिर को बड़ौ जबावे अंग भली रचनानी बनावे। जादिन केशव को न आवे तादिन पालक तेन उठावे भेटन ले बहुधा धन कीन्हो नित्य करे बहु भोग नवीनो। केशव मठधारियों को जघन्य पापी और अपराधी मानते थे। उनके युग में मठाधीश इतने अधिक पाप पंकिल हो गए थे कि केशव को कहना पड़ा कि जिनके हृदय में राम का विरोध बसता है उन्हें मठधारियों का पाप लगे। जिनके रघुनाथ विरोध बसैजु मठधारिन के तिन पाप ग्रसैजु। इसी प्रकार रामचंद्रिका में रावण के हाथ में परी हुई सीता का वर्णन करते हुए केशव ने कहा है कि सीता ऐसी प्रतीत होती है जैसे पाखंडी के हाथ में सिद्धि आ गई हो या मठाधीश के वश में बलात् एकादशी पड़ गई या चंडाल ने अनाधिकार से सामवेद की शाखा को ग्रहण कर लिया हो। पाखंडी की सिद्धि कै मठेस बस एकादशी लीनी कै स्वपच राज शाखा सुध साम की। श्रावक और बौद्ध भिक्षु ऐसा प्रतीत होता है कि जैन और बौद्ध श्रावकों का अनाचार भी उस युग में निंदनीय बन गया था। विज्ञान गीता में केशव ने जिस स्तर पर श्रावकाचार्य का उल्लेख दिया है वह आचार भ्रष्टता का ही द्योतक है। श्रावकाचार्य मूल मल मूत्र में लिपटा नग्न और हाथ में मोर पंख लेकर इस प्रकार विचरण कर रहा है जैसे कोई नरक का प्राणी भूतल पर आ गया है। इसके उपदेश इतने घृणित और निंद हैं कि संभ्रांत श्रोता उन्हें एक पल भी सुनने को उद्यत नहीं होता। वह कहता है कि कन्या वधू और बहन के साथ रात दिन विलास करो, चित्त को कभी मलिन मत होने दो। यही गुरु की उपासना शैली है। श्रावकों की भांति बौद्ध भिक्षु भी उस युग में इसी प्रकार ही की मलिन वृत्ति वाला हो गया था। श्रावकाचार्य का चित्र देखिए। यह कौन आवत है सखी मल पंक अंकित अंग सिर केस लुंचित नग्न हाथ शशि शिखंड सुरंग। यह नर्क की को जीव है जिनी याही देखी डराही निज जातीय यह श्रावका अति दूर ते तजिताही। कन्या का भगिनी वधु मिली जो रमै दिन राति चित्त मलिन न की जई गुरु पूजिय इही भाति। श्रावक की भांति बौद्ध भिक्षु भी इसी रंग में रंगा हुआ है। वह कहता है कि मैं सभी को दिव्य दृष्टि से देखता हूँ और भोग में तथा मुक्ति में कोई भेद नहीं मानता। भिक्षु को रमणियों के साथ भोग करने से रोकना नहीं चाहिए। कापालिक और भैरवी चक्र विज्ञान गीता और रामचंद्रिका के अनेक वर्णनों को पढ़कर ऐसा लगता है कि केशवदास के समय में चावार्क, श्रावक, बौद्ध भिक्षु, कापालिक, मठाधीश, महंत, भैरवी, चक्र आदि सब में अनाचार व्याप्त था और समाज पर इन सब का घातक प्रभाव पड़ रहा था। वृंदावन, प्रयाग और काशी जैसे तीर्थ स्थानों पर मठधारियों ने स्वेच्छाचार फैलाया हुआ था और पूजा पाठ के स्थान पर घोर पाखंड छाया हुआ था। भैरवी चक्र में फंसे हुए वाममार्गी व्यक्ति व्यभिचार को जीवन विलास का लक्ष्य स्वीकार करते थे और नीच जाति की स्त्रियों को कुकर्म के लिए ग्रहण किया जाता था। मथुरा और वृंदावन में भैरवी चक्र का अड्डा बन गया था। केशव ने मथुरा वृंदावन को श्रद्धा विहीन नगरी माना है। मथुरा वृंदावन सबै ढूंढ्यो देवी अशेष, कबह न श्रद्धा देखिए चित विचार करि देख। केशव ने इसी प्रसंग में विज्ञान गीता में लिखा है, श्रद्धा भैरवी के पास में फंस गई थी कि उसे विष्णु भक्ति ही छुड़ा सकती है। कापालिकों का भी वर्णन केशव ने किया है। कापालिकों का एक समय बहुत बड़ा जाल सारे देश में फैल गया था। निरक्षर और साधनहीन पाखंडी कापालिकों में जनता की श्रद्धा उतनी नहीं थी जितनी उनके पाखंड और मिथ्याचार से जनता त्रस्त और भयभीत थी। सूर्य की लालिमा का वर्णन करते हुए केशव ने कापालिक के रक्त परिपूर्ण खप्पर का उपमान प्रस्तुत किया है। कैस रोनित कलित कपाल या कापालिक काल को, कापालिकों के पाखंड का वर्णन विज्ञान गीता में भी उपलब्ध होता है। जाति वर्णन, केशवदास वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे। पाखंड और मिथ्याचार से खिन्न होकर भी केशव ने ब्राह्मणों को साधु और श्रेष्ठ कहा और उसकी सेवा अर्चा का संकेत अनेक स्थलों पर मिलता है। ब्राह्मण के संबंध में उनके विचार प्रायः अंध परंपराश्रित हैं। लंगड़ा, लूला, गूंगा, अंधा, अनाथ ब्राह्मण यदि सदाचारी हो तो सम्माननीय हो सकता है, किंतु अज्ञ, मूर्ख और अविवेकी ब्राह्मण की पूजा कौन करेगा। केशव ने तो इन सबको भी पूज्य ठहरा दिया है। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण का पक्षपात किसी तर्क पर आश्रित ना होकर अंधविश्वास पर टिका हुआ है। द्विज मांगे सो दे, विप्र को वचन न खंगी है, विप्र वैर नहीं करी है, विप्र कहा सर्वस्य दीजिए। पंगु ब्राह्मण अंध, गूंग अनाथ, राजकी रंक, अज्ञ हो ही की विज्ञ भेद मानिए करी संक। पूजिए मन वचन कर्मनी, प्रेम पुण्य प्रमाण, सावधान वैसे ये सब विप्र ब्रह्म समान। ब्राह्मण को ब्रह्मा के समान ठहराने की दृढ़ता केशवदास जैसे कवि के लिए कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। केशव ने अपने समय की कुछ अन्य जातियों को का भी संकेत यत्र तत्र किया है, उनमें माथुर भी हैं। इन माथुरों को केशवदास ने ब्रह्मा समान नहीं माना। माथुर से केशव का किसी अन्य जाति से तात्पर्य ना होकर माथुर चौबे ब्राह्मणों से ही है, क्योंकि माथुर कायस्थों का वेदाध्यान आदि कार्य नहीं होता। माथुरों का वेदाध्यान विमुख हो देख कर केशव खिन्न है। कबहूँ न सुन्य और कहूँ गुरु को कहो उपदेश, अज्ञ अज यज्ञन भेद जानत धर्म कर्म नलेस, स्नान दान सयान संयम योग याग संयोग, इराना तनु गुढ़ जानत मूढ़ माथुर लोग, ठौर ठौर विराजही मठ पाल मुक्त कुतर्क, घोष एक कहा रहो जा संग ते बहु तर्क। लोभ के प्रसंग में वीर सिंह देवचरित में भी कुछ भिन्न, कुछ निम्न जातियों के शीर स्वभाव की ओर केशव ने संकेत किया है। पासी, वधिक, जगाती, वनिया, सुनार आदि को असोभन व्यापार करने वाला बताया गया है। मद्यपान करके अथवा गांजा भांग आदि का सेवन कर इन जातियों के लोग वैश्यागमन करते हैं। मत चल ठग ठठेर वट पार, पासिया चेरे चोर लवार, वधिक जगाती वनिक सुनार, इन्हें आदि है मीत अपार, पुस्ता पीवही मांगही खाई, मदिरा पी वैस्या पह जाए। केशवदास ने कायस्थ जाति का वर्णन बहुत अच्छे शब्दों में पूरी सहानुभूति के साथ किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि केशव के युग में कायस्थ जाति के लोग अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाते थे। रिश्वत आदि लेना प्रचलित नहीं हुआ था। कायस्थों के हाथ में राज्य का लेखा जोखा रहता था और क्रय विक्रय आदि में भी राजा इस जाति के लोगों की सहायता लेता था। सभा की कार्यवाही लिखना भी कायस्थ लेखक का नाकाम था। इन सभी कार्यों में कायस्थ निर्लोभी रहकर व्यवहार करता था, जिससे केशवदास जी बहुत प्रसन्न थे। परम साधु कायथ जानिए, निर्लोभी साचो मानिए, जाने धर्माधर्म विचार, जाने अगणित नृप व्यवहार, मोल दो गुणो वर्ण विधान, क्रय विक्रय ताके परिवाण, नृप मृदा के मुद्रित करे, सुभा सदन की मूडा धरे। केशव दास ने द्रावण तथा दक्षिण देशों को निरक्षर ठहराया है। केशव के इस कथन का आधार क्या है? कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं नहीं, द्रावण दक्षिणी अक्षर, स्वच्छ वचात आदि स्फुट उक्तियों में इस प्रकार के भाव मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के संबंध में अपने विचार विस्तार पूर्वक कहीं व्यक्त नहीं किए। प्रतीत होता है कि उसके पाखंडी साधुओं को देखकर केशव का मन संन्यास की ओर से विरत हो चुका था। वानप्रस्थ आश्रम की परिणति संन्यास में होती है, अतः वानप्रस्थ का भी उन्होंने वर्णन नहीं किया। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ दो ही प्रमुख आश्रम थे। ब्रह्मचारी का लोप हो रहा था, बाल्यावस्था में विवाह होते थे, अतः शेष रहा केवल गृहस्थ्रम। केशव ने उसे ही श्रेष्ठ माना और कह दिया कि मन को वश में रखने वाले व्यक्ति के लिए घर और वन में कोई अंतर नहीं रहता। कही केशव भीतर योग जगे, अति बाहिर वह भोगिन सो तनु है, मन हाथ सदा जिनके तिनके, वन ही घर है, घर ही वन है। केशव के साहित्य के अनुशीलन से तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अन्य भक्त कवियों की भांति अपने युग की परिस्थितियों से असंपृक्त नहीं रहना चाहते थे। राज दरबारों में रहने के कारण उनकी व्यवहारिक दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों पर भी सहज ही चली जाती थी। सूर और तुलसी की भांति विभक्त नहीं थे, सदगृहस्थ की भांति समाज के सभी क्षेत्रों और परिवर्तनों से अपने को जुड़ा रखते थे। राजा, मंत्री, प्रजा, महंत, मठाधीश, श्रावक, साधु, स्त्री पुरुष सभी को उन्होंने पास से देखा परखा था, अतः उनके काव्य में युगीन चित्रण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। लोक व्यवहारानुमोदित नीति पर उनकी दृष्टि गई थी और उन्होंने नीति पर काव्य न लिखने पर भी नीति की स्थान स्थान पर चर्चा की है। इतिहास और युग धर्म का उन्होंने वीर सिंह देवचरित में पर्याप्त मात्रा में वर्णन किया है। मैंने संक्षेप में उनके युगीन चित्रण की झांकी मात्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। नीति वर्णन तथा इतिहास चित्रण इस लेख में समाविष्ट नहीं है। केशव के काव्य में युगीन चित्रण, विजय विजेंद्र स्नातक द्वारा लिखित, यह शीर्षक यहीं समाप्त होता है।